एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
ओम शांति। तो गीत में क्या सुना? सबकी यही तमन्ना है बाबा जैसा बनने की है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो भी सब बातें गीत में बताई है। बाबा जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? जो लास्ट में भी अभी सुना, व्यक्त से अव्यक्त बनना होगा। तो इस संसार की सभी व्यक्त बातों से अपने आप को न्यारा उपराम बनाना होगा, अव्यक्त। यहाँ है साकार में, लेकिन रहते हुए भी जैसे कि नहीं है। जो बाबा कहते हैं ना कि इस देह में होते हुए भी उपराम हो जाओ, इससे न्यारे रहो, विदेही बन जाओ। और इसके अलावा दूसरी बात क्या बताई बाबा जैसा बनने के लिए? जो भी साधन सुविधा है वो कोई भी हमें अपनी ओर ना खींचे, हमारी साधना में रुकावट ना बने वो। तो पूछो हर एक अपने आप से। है दो दिन पहले भी कोई भाई पूछ रहे थे कि योग में जब बैठते हैं तो पता नहीं बिजनेस की याद आती है, उस फलाने की चिंता हो जाती है, फलाने कार्य की ये होता है वो होता है, क्यों खींचती है संसार की बातें, क्यों हमारी साधना में रुकावट बनती है? हमने अभी भी बाबा तो मिल गया सब ये कहते हैं, लेकिन उसको मिलने के बाद भी कुछ और पाने की चाहना रखी हुई है। वो भी मिलना चाहिए, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। तो चाहना जा है तो बुद्धि जाएगी। तो इसलिए जो भी इच्छा चाहना है बाबा कहते एक मेरे में समा दो, बाबा को दे दो, बाबा की जो इच्छा है वो पूरी करके दिखाएं, वैसा बन के दिखाएं, तो बाबा सब इच्छाएं स्वतः ही पूरी कर देगा। और क्या करना होगा बाबा जैसा बनने के लिए? समर्थ। हाँ देखो इन्होंने अच्छी बात बताई, क्या क्यों में नहीं जाना है। ऐसी बहुतों के आगे बातें आती है ना, हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी किसी ने कुछ बोल दिया है, कोई ऊपर नीचे बात हो गई है और कोई बात हो गई, तो उसको देखकर मन में प्रश्न उठता है बहुतों के, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, अभी क्या करें है? तो अगर ज्ञान आपने ठीक रीति से समझा है, ज्ञान स्वरूप बनकर चलते हैं, तो वहां पर क्या क्यों तो आना ही नहीं चाहिए। अगर क्या क्यों का प्रश्न उठ रहा है तो इसका मतलब क्या, या तो हमने ज्ञान को पूरी तरह समझा नहीं है, है? या फिर समझा भी है तो वो इमर्ज रूप में नहीं है, उसका सदैव स्वरूप हम बन के नहीं चलते हैं। तो इसलिए ज्ञान इमर्ज रूप में रख के चले, ज्ञान स्वरूप बन के चले, और विदेही देही अपमानी, जो बाबा भिन्न भिन्न रूप से मुरलियों में ये बात कहते रहते। आज भी बाबा ने मुरली में कहा माया के धोखे से बचना है तो क्या करो, देही अभिमानी बन के रहो। एक ऐसी स्थिति है कि इसमें आपको कब कहां क्या करना है, यदि आत्म अभिमानी देही अभिमानी हम बनकर चलते हैं रहते हैं, तो जिस समय जो आपको करना है वही संकल्प वही विचार आपके मन में आएगा, ये करो ऐसा करो, और वैसा करने में सफल होता है, तो कहीं भी कुछ प्रश्न नहीं उठेगा, आपके पुरुषार्थ की गाड़ी रुकेगी नहीं, जिस समय जो करना है वही याद आएगा। और इस धारणा के आधार से जो बातें आप जीवन से भूलना चाहते हो भूलती चली जाएं, और जो याद रखना चाहते हैं वो याद रहने लगे। उसकी एक ही विधि है कि जितना जितना हमारी स्थिति देही अभिमानी पन की होगी, आत्म अभिमानी बन के हम रहेंगे, तो आत्मा के असली जो निजी गुण हैं, कौन कौन से निजी गुण हैं आत्मा के? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये सभी हमारे अंदर इमर्ज रूप में रहेंगे। तो इस प्रकार से बाबा जैसा बनने के लिए इन बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं। और आज भी जो मुरलीम बाबा ने कहा, अपने ऊपर रहम करो, तो क्या रहम करना होगा अपने ऊपर बाबा जैसा बनने के लिए? पूर्ण रीति से श्रीमत की पालना हो, हर श्रीमत की है? अमृत वेले से जिस समय या कार्य के लिए बाबा ने जो भी श्रीमत दी है उनकी सभी की पूर्ण पालना हमारे जीवन में। मोटी मोटी बातों की तो सब करते ही हैं, लेकिन फिर भी कईयों से छोटी छोटी बातों का कहीं न कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, हम रोजाना देखते हैं। और कई भाई बहन याद भी दिलाते, बात छोटी सी है लेकिन ध्यान देने की है। भोजन के समय आप बर्तन लेते हैं, माताओं ने कई भाइयों को देखते भी हम तो लिए और वो मिनरल वाटर से धुलाई करने लग जाते हैं और याद भी दिलाते हैं, भाई ये मिनरल वाटर है, पीने का उस पर लिखा भी हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मिनरल वाटर बर्तन है। तो ये क्या हुआ, श्रीमत की पालना हुई? एक माता को मैंने बोला भी तो उसने क्या जवाब दिया पता है? सभी तो धुलाई करते हैं ना, मैंने किया तो क्या होगा। तो बात छोटी सी है लेकिन हम सारे दिन में ऐसे, ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, हम चलते जा रहे हैं, आप तो योग नहीं कर रहे लेकिन आपको देखकर जो दूसरों का संकल्प चल रहा है उसका बोझ किस पर चढ़ेगा? सब कमरे में सोए हुए आपके जोर जोर से बातें करने लगे, लाइट जला दी, तो कहिए जो सोए हुए हैं उनका संकल्प चला तो ये क्या हुआ? तो ऐसे हमारे द्वारा कोई भी कार्य अगर ऐसा होता है जिससे अगली आत्मा का बुद्धियोग तोड़ने के हम निमित्त बनते हैं, कर्म का खाता तो बनता है ना। ऐसे एक मुरली बाबा ने कहा कि ऐसे छोटी छोटी करते करते छोटी छोटी अवज्ञाएं का खाता जब बहुत बढ़ जाता है तो उस समय वो बाबा से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनता है, अपनी ओर बुद्धि खींचता है। इसलिए हम हर श्रीमत की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो तो उससे भी एक तो अपने आप पर हम रहम करेंगे, फिर नेचुरल है बाबा का कहना हम मानेंगे तो उसकी याद भी सोते ही रहेगी। और बाबा जैसा बनने के लिए योग और पढ़ाई, बाबा ने कहा कभी स्वप्न में भी सोचा था कि योग और पढ़ाई से विश्व की बादशाही मिलेगी है? सोचा था कभी किसी ने है? तो इस पढ़ाई का हमारे हम पूरा रिगार्ड दें, सम्मान करें। जिस समय जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं हर बात की पूर्ण पालना हमारे जीवन में करके चले। पढ़ाई की कभी भी रोजाना की मुरली से चलो ज्यादा याद रहे बातें तो बहुत अच्छी बात है, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम या दो या तीन बातें ही, दो तीन बातें तो बुद्धि में रख सकता है ना व्यक्ति है। चलो और ज्यादा बातें याद नहीं थी भूल जाती है कोई बात नहीं है, लेकिन दो या तीन बातें जो आपको सबसे अच्छी लगी हो वो अपने पास नोट कर लो सुबह से ही कि आज इन दो तीन बातों पर मुझे प्रैक्टिकल में जीवन की धारणा में लाना है या अभ्यास करके चलना है। जैसे कि आज की बात है योग और पढ़ाई है, तो इस पर हमने कितना ध्यान दिया। बाबा ने आज की मुरली में जो कहा वो कितनी बार रिवाइज किया, कितना उसको अपने जीवन की धारणा में लाया, कितना पूर्ण पालना की हर श्रीमत की, उस पर ही थोड़ा चिंतन करके चलो, ध्यान दो सारे दिन में। तो यही है पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। तो ऐसे इस पढ़ाई में बाबा जो हमें एक मुरली में, रोजाना की मुरली में चारों सब्जेक्ट की बातें बाबा सुनाते हैं। पढ़ाई के चार सब्जेक्ट है ना हमारे, हैं? तो उन चारों सब्जेक्ट की बातें बाबा सुनाते हैं, तो उसमें से अगर हम सभी सब्जेक्ट में हमको पूरे मार्क्स लेने हैं, फुल नंबर लेने हैं, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना, तभी पास विद्यानर बन सकेंगे। तो चारों सब्जेक्ट में हमारे फुल नंबर आए तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, विषय ज्ञान। हम सब ज्ञान सुनते भी हैं और दूसरों को सुनाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा की क्या निशानी होगी, ज्ञान के सब्जेक्ट में हम कैसे फुल मार्क्स ले सकें लेंगे। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा मैं। हाँ, सुनते समय, अच्छी बात बताई बहन जी ने, सुनते समय स्टूडेंट समझकर सुनना और सुनाते समय निमित्त बनकर सुनाना, बाबा मेरे से ये काम करवा रहा है। और ज्ञान स्वरूप बन के चलना, ठीक बात। और पहले बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको पूरी तरह समझकर, ये तो ही धारणा की बात, लेकिन निशानी क्या होगी, देखने में आएगी निशानी। तो ज्ञानी जो आत्मा होगी उसकी निशानी ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल देखने में आए उसके। ज्ञानी तो आत्मा की, जो बाबा ने बताई वो बात भी सही ठीक है, आप सबने जो भी बताई, लेकिन बाबा की बात कुछ थोड़ा सा अलग ही होती है। तो बाबा ने थोड़ा बेंजी ने बतलाया उसको, ज्ञानी अर्थात समझदार, उसको सब प्रकार की नॉलेज ज्ञान पूरी तरह इमर्ज रूप में होगा। वो हर जो भी कुछ करेगा, कर्म आदि मध्य अंत को सोच समझ कर करेगा, नॉलेजफुल बनकर करेगा। मैं जो भी ये कर्म कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है नहीं है, कितना बाबा की श्रीमत अनुसार है या नहीं, करूंगे तो इसके करने का परिणाम क्या होगा। तो कोई भी कर्म करेगी ज्ञानी तो आत्मा, तो वो सोच समझ कर करेगी, इसलिए क्या होगा, हम कोई कर्म सोच समझ करते हैं तो इसमें सहज सफलता मिलती है। और इसलिए क्या होगा कि उसके मन में, ज्ञानी आत्मा जो होगी उसके मन में किसी प्रकार का कभी भी प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि बाबा ने सब प्रश्नों का हल हमको बताया हुआ है, समाधान बताया है। कोई बात ऐसी नहीं रखी है जो बाबा ने छुपा के रखी हो, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, सब कुछ बता दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर फिर भी कहीं प्रश्न उठ रहा है तो इसका मतलब क्या, उठते तो है ना कईयों के मन में फिर, तो उसका मतलब क्या कि ज्ञान को पूरी तरह हमने समझा नहीं है। तो ज्ञान स्वरूप बनकर और हर कार्य आदि मध्य अंत को सोच समझ कर चलने से सहज सफलता प्राप्त करेगी, बात ज्ञान स्वरूप सदैव रहेगी। तो उसके द्वारा किस समय क्या करना है वही टचिंग उसको मिलेगी और वैसा करने में वो सफल होती है। तो इस प्रकार से, और आपने देखा होगा जब ज्ञान हम सुनाते भी हैं तो अगर ज्ञान बाबा की याद में रह के सुनाओ, आत्म अभिमानी बनकर सुनाओ, चाहे आप अज्ञानियों को सुनाते हैं या ज्ञानियों को सुनाते हैं ज्ञान, लेकिन हमेशा ये अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित होकर हर कर्म करने की प्रैक्टिस हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। यदि हम याद में रह के आत्मअभिमानी बनकर कोई भी कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो उसकी सहज सफलता होगी, उसका दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार ज्ञान स्वरूप बनकर हम ज्ञान के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ले सकेंगे। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? योग। हम सब योग करते भी हैं और दूसरों को योग लगाने की विधि बताते हैं, योगी कहलाते हैं। तो योगी आत्मा की क्या निशानी होगी? हर कर्म युक्त युक्त होगा। कर्म युक्त। और योगी आत्मा की निशानी? सभी योगी बैठे हैं यहाँ, हैं? सरल होगा। और बताते जाइए। शीतल होगा, चेहरे पर खुशी होगी। भाई लोग बताएं, मेहनत अनुभव नहीं करेगा, हर्षित रहेगा, शुभ चिंतक। नथिंग न्यू, हाँ, कुछ भी देखते प्रश्न उठेगा। और दुनिया बातों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इजी होकर चलेगा, कर्म बंधन से मुक्त होगा। बाबा ने जो बताई निशानी, योगी अर्थात सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, तभी तो बाबा के साथ कनेक्शन ठीक रहेगा ना, तभी तो निरंतर योगी रह सकेंगे ना। तो क्लीन और क्लियर बुद्धि है, बुद्धि स्वच्छ और प्योर हो, किसी प्रकार की अस्वच्छता नहीं हो, तो कनेक्शन बाबा से जुटा रहेगा और पावर आती रहेगी है। तो हरेक हम अपने आप को देखें कि हम कितना बुद्धि क्लीन और क्लियर हमारी बनी है, सदैव बाबा से कनेक्शन जुटा रहता है। अगर किसी प्रकार की अस्वच्छता है, विचारों की, खाने की, स्थान की, पहनने की या और किसी भी बात की, तो वहां तुरंत बाबा से कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा, व्यर्थ के विचारों की। तो हमें ये ध्यान रख के चलना होगा कि सदैव बाबा के साथ बुद्धि की लाइन को हमें क्लियर रखना है। कैसे रहेगी सदैव बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर? क्यों कनेक्शन टूट जाता है, क्यों निरंतर योग नहीं रह पाता है? होता तो है ना ये बातें, हैं? एक तो मैंने बताया किसी प्रकार की अस्वच्छता ना हो, व्यर्थ से भी मुक्त, हाँ, ये भी अच्छी बात है कि जैसे हम स्थूल कारोबार की सारे दिन की दिनचर्या बनाकर चलते हैं, भाई इस समय ये करना है, इतने बजे ये करना है, ऐसे ही मन बुद्धि की भी दिनचर्या फिक्स हो। मन हर समय आधे आधे घंटे, एक एक घंटे, दो घंटे, जितना जैसे जो कर सकते हैं अभ्यास, कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए हम चले, तो बुद्धि और बातों में फिर नहीं जाएगी। और इसके अलावा किसी प्रकार का अगर अभिमान है तो वो भी भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनता है। मैंने किया है, मेरे अंदर ये गुण विशेषता है, मुझे इसका श्रेय मिले। कुछ करने के बाद यदि कुछ पाने की चाह है तो वो भी बाबा से बुद्धि योग तोड़ देगा। वास्तव में कराने वाला सब कुछ वही है और हम आप सभी तो निमित्त बन के पाठ बजा रहे हैं। इस धारणा को यदि हम अपने जीवन का आधार बना के चलते हैं तो सब कुछ सहज और सरल हो जाता है। और अभिमान जहां आता है तो अभिमान क्या होता है? अपमान कराता है, अभिमानी आत्मा को फीलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। कुछ भी कहो फटाके से उसको फीलिंग आ जाएगी, अगर अपमान है तो ये उसकी निशानी होगी। और अभिमान को खत्म करने के लिए हम एक तो अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें सदैव, और निमित्त बन के पाठ बजाएं, इसके अलावा हम जितना जितना देही अभिमानी बन के रहेंगे तो वहां भी अभिमान खत्म होता चला जाएगा। इस पर एक मुझे बाबा के संदेश की बहुत अच्छी बात याद आई, आप सभी भी सुनते रहना और साथ साथ चेक भी करते रहना अपने आप को, तो पता चल जाएगा कि अभी तक हमारे अंदर मैं मेरेपन का या किसी प्रकार का अभिमान है या खत्म हो चुका है, ज्यादा तो मैं मेरेपन का ही होता है। तो बाबा ने एक संदेश में ये बात कही कि बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे, तो चार्ट में बाबा ने क्या देखा कि बच्चों के अंदर से मोटे रूप का मैं मेरेपन का अभिमान तो खत्म हुआ है, लेकिन सूक्ष्म रूप का अभी भी रहा हुआ है। तो क्या है उस बात का पता कैसे चलेगा सूक्ष्म रूप का मैं मेरेपन का? उसके लिए बाबा ने एक यंत्र दिया तीन बातों का, अब आप सुनते जाना और उस यंत्र के द्वारा चेक करना अपने आप को। तीन बातों का यंत्र दिया कि देह भान से न्यारे होकर, पहली बात तो सभी देह भान से न्यारे हो जाओ, आत्मानी बन जाओ, मैं आत्मा सुन रही हूं इन कानों के द्वारा, आत्मा आत्मा से सुन रही हूं, आत्मा देख रही हूं, इस स्वरूप में स्थित हो जाओ, देह भान से न्यारे होकर और साक्षी दृष्टा बनकर। एक खेल एक नाटक चल रहा है और उसमें हम सभी हर एक आत्मा या अपना अपना शरीर धारण कर पाठ बजा रही, इस रीति से इस खेल को देखो, साक्षी दृष्टा बनकर। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो, अर्थात ज्ञान सारा ज्ञान इमर्ज कर लो, ज्ञान स्वरूप बन जाओ, इमर्ज रूप में रहे। तो इन तीन बातों के यंत्र से ये यंत्र मिला तीन बातों का, और अब चेक क्या करना है कि यदि अचानक ऑर्डर मिले, यदि अचानक ऑर्डर मिले कि छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए, बाबन का इसमें एवर रेडी हो, हर एक अपने आप से पूछ ले। मान लो यहां बैठे बैठे ही अभी बाबा की तरफ से ऑर्डर मिले कि बच्चे सब कुछ छोड़ के चले आओ एक सेकंड में उड़ के बाबा के पास, तो हर एक अपने आप से पूछ लें क्या हम ऐसे अपने आप को एवर रेडी बनाएं कि एक सेकंड में संकल्प किया और सब कुछ से मुक्त होकर बाबा के पास पहुंच गए। अगर ऐसा होता है तो समझो कि हम एवर रेडी बने हैं, मैं मेरे, और वही एवर रेडी बन सकेंगे जो मैं मेरेपन से मुक्त होंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, बुद्धि गई तो पेपर तो एक सेकंड का ही होना है, गई बुद्धि तो फेल, और बुद्धि उसी में जाएगी जिसमें मेरापन होगा, जहां मैंपन होगा, तो अपनी ओर खींचेगी वो बात। तो इस तरह से हर एक अपने आप को चेक कर लें कि हमने अपने आप को अभी तक मैं मेरेपन से कितना मुक्त किया है। इसके ऊपर एक महाभारत का बहुत अच्छा दृश्य मुझे याद आया, हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो, कोई सुना रहे थे, महाभारत में युद्ध में पांडवों के विजय प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा अभिमान आ गया था कि हमारे कारण महाभारत युद्ध जीता गया है, तो उस अभिमान का रियलाइजेशन कराने के लिए वो सीन बताया है कि श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने एक राक्षस को मारा था, तो सुदर्शन चक्र घूमता हुआ गया, राक्षस का गला कट गया। तो गला कटने के बाद थोड़ा समय तक तो उसमें जान रहती है, तो राक्षस बोला कि महाराज मेरे को आपने मार तो दिया है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा रह गई है, वो पूरी करनी पड़ेगी आपको। तो बोले क्या है भाई आपकी अंतिम इच्छा? तो बोले मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपनी इन आंखों से सारा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोल देखो मैं आपको अभी पूरी तरह जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था में ही मैं आपके इस कटे हुए सिर को एक ऊंचे पेड़ पर रख देता हूं, और यहां रख के आपको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, और आप यहां बैठे हुए ही सारा महाभारत युद्ध देख सकोगे। तो उसने उसके श्री भगवान श्री कृष्ण ने उसको कटे हुए सिर को ऊंचे पेड़ पर रख दिया और जब दृष्टि दी उसको और कहा कभी आप बैठे हुए यहाँ सारा महाभारत युद्ध देख सकोगे। उसके बाद महाभारत युद्ध शुरू हुआ। तो जैसा कि सबको पता है महाभारत के युद्ध में किसकी विजय हुई? पांडवों की। और पांडवों में सबसे ज्यादा विजय का श्रेय किसको मिला? अर्जुन को। तो इस विजय के श्रेय को पाकर अर्जुन के मन में भी और पांडवों के मन में भी थोड़ा सा अभिमान आ गया था कि हमारे कारण महाभारत युद्ध जीता गया। तो उस अभिमान का रियलाइजेशन कराने के लिए आगे सीन बताया है कि महाभारत युद्ध के बाद पांचों पांडवों के साथ श्री कृष्ण उसी रास्ते से आगे आ रहा था जहां की आगे पेड़ पर कटा हुआ राक्षस का सिर रखा था। तो श्री कृष्ण को तो पता था सब कुछ ये। तो जैसे जैसे वो पेड़ के नजदीक पहुंचते हैं तो उनको जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। तो पांचों पांडव देखते हैं भाई ये व्यक्ति तो कोई नजर नहीं आ रहा, हंसने की आवाज कहां से आ रही है? तो जैसे जैसे वो पेड़ के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ पर कटा हुआ राक्षस का सिर रखा है और वो जोर जोर से हंस रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि इस अवस्था में भी ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है, जबकि सिर धड़ से अलग है और फिर भी हंस रहा है, तो जरूर कोई विशेष बात होगी, इससे पूछा जाए। तो अर्जुन ने उससे पूछा कि भाई इस अवस्था में भी आप इतना खुश क्यों हो, क्या कारण है? तो उसने कहा कि मैं इसलिए बहुत खुश हूं, भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो बोल क्या थी आपकी अंतिम इच्छा? तो बोल मेरी अंतिम इच्छा यह थी कि मैं अपनी इन आंखों से सारा महाभारत युद्ध देखूं। तो भगवान ने मेरे कटे हुए सिर को ऊंचे पेड़ पर रख दिया और मेरे को दिव्य दृष्टि दी, मैंने यहां बैठे हुए ही सारा महाभारत युद्ध देखा। बोला अच्छा। बोला तो आपने बोल सारा महाभारत युद्ध देखा है तो आप सही सही बताना कि आपको पूरे महाभारत युद्ध में सबसे अच्छा योद्धा कौन नजर आया? जो अर्जुन को यह था ना भाई हमारे कारण महाभारत युद्ध जीता है तो इसने देखा है तो जरूर बताया गया, इससे पूछा जाए। तो वो राक्षस जवाब दे अर्जुन की बात का, उसके पहले बीच में श्री कृष्ण बोलता है राक्षस को कि आप सही सही नहीं बताओ तो अच्छा रहेगा। राक्षस सुनकर सोच में पड़ गया भगवान ऐसे क्यों बोल रहा है। तो राक्षस ने कहा कि महाराज मैंने सारा जीवन तो अनेक पाप कर्म विकर्म किए जिनकी सजा तो मुझे ये मिली अंत में, और अब अंत के समय मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा और ही पाप कर्म विकर्म बन जाएगा, इसलिए मुझे सच तो बताना ही पड़ेगा। फिर भी दोबारा श्री कृष्ण बोला कि नहीं नहीं आप सही सही नहीं बताओ तो अच्छा रहेगा। फिर भी राक्षस ने बोला कि नहीं महाराज मेरा और पाप कर्म विकर्म ना बने इसलिए मुझे सच तो बताना ही पड़ेगा। तो मैंने तो क्या देखा कि मुझे तो पूरे महाभारत युद्ध में कोई भी योद्धा नजर ही नहीं आया। मैंने तो क्या देखा कि मैंने तो जिधर भी देखा उधर भगवान श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र घूमता हुआ नजर आया और वही सब कुछ करा रहे थे, वही चला रहे थे। तो यहां पर भी तो क्या हो रहा है, बाबा ही सब कुछ करा रहा है, वही चला रहा है, सत्यता तो यही है। लेकिन जो कईयों को थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद जो अभिमान आ जाता है मेपन का, मैंने ऐसा किया, मेरे को इसका श्रेय मिलना चाहिए, है मेरे अंदर ये गुण विशेषता, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये मैंपन का अभिमान अपमान कराता है, नीचे गिराता है, पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बनता है, बाबा से बुद्धि योग तोड़ने का भी कारण बन जाता है। इसलिए सदैव निमित्त बन के पाठ बजाएं, करण करा बनहार बाबा करा रहा है और हम कर रहे हैं, अपना गीत भी है ना ये कहता। तो इस प्रकार से जहां पर निमित भाव है, ट्रस्टी भाव है, तो वहां ऐसी आत्मा सहज योगी बन जाएगी है। तो इस प्रकार योग के सब्जेक्ट में और भी सब प्रकार के विस्तार को समेट कर हम सार स्वरूप बने, बुद्धि की स्वच्छता और पवित्रता हो कंप्लीट। क्योंकि बाबा कई बार कहता है मुरलियों में कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए है, तो वो सर्वशक्तिवान बाप की याद, जो बुद्धि एकदम स्वच्छ और पवित्र होगी उसी के अंदर ठहर सकेगी। तो हमारे अंदर ये देखें, हम सभी चेक करें अपने आप को कि मैंने पवित्रता में कितना अपने आप को संपूर्ण बनाया है। पवित्र तो सब बने हैं लेकिन उसमें संपूर्णता कितनी आई है, वो चेक करने की बात। तो पवित्रता की संपूर्णता क्या है, इस संबंध में अव्यक्त पाप दादा ने मुरलियों में 7 बातें बताई है। पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता, खाने की, रहने की, स्थान की, पहनने की, कपड़ों की, विचारों की, सब प्रकार की स्वच्छता का हम कितना पालन करके चलते हैं। तो जब ये सब प्रकार की स्वच्छता होगी तो उससे बुद्धि की भी स्वच्छता को बढ़ाने में, मेंटेन करने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का संपूर्ण निर्विकारिता, सॉरी ये तीसरा है, दूसरा स्वरूप है मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना, अर्थात मनसा वाचा कर्म ना, जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है उस सभी को पूर्ण रीति से पालन करके चलने वाली आत्मा ही ब्रह्माचारी कही जाएगी, अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा। तीसरा जो मैंने बताया संपूर्ण निर्विकारिता, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। एक मुरली में बाबा ने कहा कि मोटे मोटे 5 विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। ऐसा है, है? माताएं हंस रही है क्योंकि माताओं को आदत होती है ना बच्चे संभालने की, है तो बाबा कह रहा है तो जरूर होंगे, हैं? तो वो क्या हैं बाल बच्चे, हैं? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, निंदा, चुगली, सुस्ती, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, माने किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव बात है हमारे अंदर, तो वो भी अपवित्रता की लिस्ट में गिनी जाएगी। तो संपूर्ण पवित्र आत्मा फिर कैसे हुए? तो किसी प्रकार की किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। चौथा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एक व्रता, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक बनी है। और पांचवा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, ये साकार मुरली में बाबा ने बताई ये बात कि अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो हर एक चेक कर ले उसी तरह से भी अपने आप को। छठा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो। अर्थात सदा समर्थ विचार तो कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। और सातवां स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा संकल्प अथवा स्वप्न में भी, संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन सातों बातों को सामने रखकर हम अपने आप को चेक कर लें कि हमने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर रहने लगेगी, और इस प्रकार से सदैव क्लीन और क्लियर बुद्धि बनकर योग के सब्जेक्ट में हम फुल मार्क्स ले सकेंगे। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? धारणा। हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके चलते हैं, दूसरों को भी धारण करने की शिक्षा या इशारा देते हैं, ज्ञान देते हैं। धारणा मूर्त आत्मा कहलाते हैं। तो जो धारणा मूर्त आत्मा होगी उसकी क्या निशानी होगी? जब हम ज्ञान योग की प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करके चलते हैं तो क्या निशानी दिखाई देगी ऐसी आत्मा से? चाल चलन रायल होगी, और हर कर्म में देवी गुण नजर आएंगे, चलते फिरते म्यूजियम। बाबा ने कहा धारणा मूर्त अर्थात डबल लाइट स्थिति होगी उसकी, सब कुछ करते हल्के डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट तो मेरा शरीर भी लाइट, या किसी प्रकार का वो समस्या भी आए तो वो भी बाबा को अर्पित करके हल्के रहेंगे। कोई भी परिस्थिति बात समस्या विघ्न उन्हें उनकी स्थिति को भारी नहीं बनाएगा। बड़ी बड़ी समस्या परिस्थितियों में रहते हुए भी वो ऐसी आत्मा धारणा मूर्त आत्मा जो होगी वो हल्की रह के चलेगी। कोई बात नहीं, बाबा बैठा है सब ठीक कर देगा, जो हुआ उसमें भी कोई कल्याण होगा, हिसाब किताब चुक तो हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये सब बातें हमको अनेक विघ्न परिस्थितियों में हल्का रख सकेंगी, इनको हम अपने जीवन की धारणा बना के चले तो सहज ही डबल लाइट स्थिति बनती चली जाएगी। सब बोझ बाबा को अर्पित कर दे, बाबा फलानी बात ऐसे ऐसे अभी आप देख लेना। सचमुच बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। आप सोचो कितनी बड़ी बात पावन कहती, बुद्धि से सोचने में भी टाइम वेस्ट नहीं करो, सिर्फ आप मुझे याद करो कब कहां क्या करना है वो मैं पहले से, अगर आप मेरी याद में रहकर चलोगे तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, वैसे ही रास्ता आपको क्लियर नजर आएगा। ऐसे चलते चलो, ऐसे करो, बस सोचना भी नहीं पड़ेगा। और ऐसे होता है अगर हम बाबा की याद में रहकर चलते हैं, डबल लाइट रहते हैं। तो इस प्रकार से सब बोझ बाबा को अर्पित करके डबल लाइट स्थिति बनाकर धारणा के सब्जेक्ट में हम फुल मार्क्स ले सकेंगे। चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? सेवा। हम सेवा करते भी हैं, दूसरों को भी करने के लिए बताते हैं या तरीके विधि बताते हैं, सेवाधारी कहलाते हैं। तो सेवाधारी आत्मा की क्या निशानी होगी? खुशी। और निमित और निर्माण चित। मैं निमित बन के पाठ बजा रही हूं, बाबा करा रहा है वो चला रहा है। कभी भी कुछ करने के बाद किसी भी बात का अहंकार नहीं आएगा। सभी प्रकार के अहंकार खत्म, निरहंकारिता का गुण उसके अंदर आए, और वो जो भी करेगी एक लगन से दिल से सेवा करेगी। ऐसा इस आधार से दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। तो इस प्रकार से सेवा के सब्जेक्ट में भी फुल मार्क्स लेकर चारों सब्जेक्ट में हम फुल मार्क्स ले सकेंगे। ओम शांति।